मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे राजनीति शास्त्र के फाउंडेशन के बारे में कुछ बातें की थी और मुझे यकीन है कि शायद आप मेरी बातों से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कन्विंस हुए ही होंगे। अगर नहीं भी हुए हों तो मेरी बातों पर आप विचार करें, क्योंकि उसके बिना बात बनेगी नहीं। तो अब मैं आगे उसी बात को रिपीट न करके या विस्तार में न जाकर के अब सीधे सीधे राजनीति शास्त्र के प्रश्नों पर आता हूं। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है 2021 के प्री एग्जामिनेशन का, मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे पास बी सेट है उसका, और उसमें जो राजनीति शास्त्र का जो पहला प्रश्न पूछा गया 51 पर है। 51 मेरे पास जो पेपर है उसका उसकी संख्या है 51। वहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं और आप देखेंगे कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा, मैं उस तरह से छांट करके नहीं रखूंगा, सीरियली जो आते चले जाएंगे उन्हें आपके सामने पेश करता चला जाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर सकेंगे, एक बात आप पाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस से भी या कॉन्स्टिट्यूशन से भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नो डाउट कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तथ्यात्मक होते हैं। लगभग आप कह लीजिए कि 40% 50% तक प्रश्न जो है वो तथ्यात्मक होते हैं। अगर आपको सही मायने में बातें मालूम है, तथ्य मालूम है, तो आप उन्हें हल कर लेंगे, और अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी अगर विषय पर आपकी पकड़ अच्छी है, आपकी समझ अच्छी है, तो आप उनमें भी दो विकल्पों तक तो पहुंच ही जाएंगे, और दो विकल्पों तक पहुंच जाना मैं समझता हूं कि प्री एग्जामिनेशन की सफलता की लगभग गारंटी सी हो जाती है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं सीधे अब प्रश्न से। प्रश्न संख्या 51 बहुत ही सरल सा प्रश्न है, लेकिन थोड़े से तथ्यों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा कि तथ्य भी यहां जरूरी हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स के प्रश्नों में तथ्यों की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है जितनी यहां पड़ती है। इतिहास के प्रश्नों में भी आपने देखा कि कुछ प्रश्न तो ऐसे होते ही है कि अगर आपको मालूम है तो मालूम है, अगर मालूम नहीं है तो मालूम नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आप सभी प्रश्नों को जो है केवल अपनी क्षमताओं के आधार पर हल कर लेंगे, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट पॉसिबल, सोचना भी ऐसा नहीं चाहिए। प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, अब देखिए संविधान की बात आ गई तो संविधान के अंतर्गत तो तथ्य दिए हुए हैं, लेकिन हम साथ ही साथ संविधान के करेक्टर को भी जानते हैं। एक तो हमारा संविधान है, संविधान के अंतर्गत इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि हम अपने संविधान के क्या करेक्टर से परिचित है, कि हमारा संविधान किस तरीके का है। देखिए हमारे संविधान की जो उद्देशिका है वो बेसिकली हमारे संविधान के चरित्र को ही बताता है कि हम इस तरह का संविधान बना रहे हैं, वो बेसिक करेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सीधी सी बात है कि अंदर जो बातें लिखी गई हैं संविधान की, वो उसके बेसिक करेक्टर को केवल प्रूफ करने वाली होंगी, जो उस बेसिक करेक्टर से मेल खाती हों। यानी कि अगर कोई भी बात जो इस बेसिक करेक्टर से अलग है, उसके आधारभूत चरित्र से के विपरीत जा रही है, तो वहां आपको थोड़ा सा डाउट कर लेना चाहिए, अदरवाइज ठीक है, उस पर विचार करना चाहिए। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है। ए बी सी डी सीधे सीधे दिया हुआ है। ए समता का अधिकार, अब जब सोचेंगे तो लगेगा कि हाँ यार ये जो समानता का अधिकार है इसका तो ये उल्लंघन करेगा, क्योंकि कुछ के पास धन का केंद्र बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है और कुछ के पास बिल्कुल धन ही नहीं है, वो भूखे मर रहे हैं, तो समता का जो अधिकार है वो तो उसका उल्लंघन कर रहा है, आप इसमें भी निशान लगा सकते हैं। फिर है राज्य के नीति के निदेशक तत्व। सी है स्वातंत्र का अधिकार। इसके बाद है कल्याण की अवधारणा। ये चार विकल्प दिए गए हैं, हम विकल्पों पर बात करेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि मैं इसका जो इंग्लिश क्वेश्चन है वो भी आपको पढ़कर सुना दूं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, किसका वायलेशन कर रहे हैं, देखो ए द राइट टू इक्वालिटी, बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी The right to freedom, और D the concept of welfare। दोस्तों यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, शायद इससे पहले मैंने ये बात ना बताई हो, कि जब पेपर सेट किया जाता है या इस तरह के जब प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो जो क्वेश्चन तैयार करने वाला है उसके दिमाग में यह बात बिल्कुल साफ साफ होती है कि स्टूडेंट को कैसे घुमाया जाए, भ्रम में डाला जाए, भूल भुलैया में खड़ा किया जाए। तो वो जो विकल्प देता है जानबूझकर के वो इस तरह के विकल्प लाने की कोशिश करता है कि आप थोड़ा सा ठिठक जाए, आउटराइट उसे रिजेक्ट करने की हिम्मत न कर सके। हाँ, अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तब आप ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन सबको नहीं कर पाएंगे। जैसे चार विकल्प हैं तो चारों को नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि जो चार विकल्प दिए जाते हैं उनके तार कहीं न कहीं सही उत्तर से जुड़े हुए से दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर होता तो चारों के चारों सही होते, लेकिन चारों तो सही नहीं है। अब आप देखिए कि इसमें जो चार विकल्प दिए गए हैं आप बकायदे घुमा फिरा करके इन्हें धन के केंद्रीकरण से जोड़ सकते हैं। समता का अधिकार उल्लंघन करता है, धन कुछ लोगों के पास धन इकट्ठा हो जाएगा। तो राज्य के नीति के निदेशक तत्व, तो चलिए इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार थोड़ा सा कमजोर विकल्प है। क्या ऐसा नहीं है भाई, आपके स्वतंत्रता को कैसे बाधित करता है? किसी ने ज्यादा धन कमा लिया है, किसी ने कोई नहीं कमा पाया है, कोई भूखे मर रहा है, कोई खा खा करके मर रहा है, तो इसमें स्वतंत्रता तो बाधित नहीं हो रही है किसी की। आप जितना धन चाहे कमाना आप कमा लीजिए, तो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि मूल अधिकारों के तहत यह स्वतंत्रता का अधिकार है तो उन्होंने इसे डाल दिया। और चौथा है कल्याण की अवधारणा। कल्याण की अवधारणा कैसे जुड़ा हुआ है? कल्याण की अवधारणा इस रूप में जुड़ी है इससे कि मान लीजिए कि कुछ लोगों ने अपने पास धन बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, इसका मतलब है कि सरकार के पास अब धन कम है। अगर सरकार के पास धन कम है तो वो कैसे कल्याणकारी योजनाओं में जाएगी, कैसे कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर सकेगी? क्योंकि धन तो कुछ लोगों के पास चला गया है जो कि सरकार के पास होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको यह भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ दिखाई देगा। अब हम सही उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे संविधान का जो चरित्र है वह हमारी उद्देशिका में निहित है। उद्देशिका में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक समतावादी समाज की स्थापना की बात मिलेगी, जिसे हम समाजवादी विचारधारा कहते हैं, राइट? लेकिन याद रखिए कि धन के केंद्रीकरण को जो आप रोकते हैं, देखिए उल्लंघन करता है, उल्लंघन, उल्लंघन का मतलब क्या हुआ कि एक सिस्टम बनाया गया है और वह उस सिस्टम को तोड़ रहा है, कानून को तोड़ रहा है, या उल्लंघन शब्द का इस्तेमाल ना, वायलेट कर रहा है वो, यानी कि कोई सामान्य तरीके से उससे अपेक्षा की जाती है। उल्लंघन तो वही होगा ना जबकि कोई बात कही गई हो और उस बात को माना नहीं जा रहा हो। मजेदार बात यह है कि यहां समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया हुआ है, ये सबके सब मूल अधिकार की बातें हैं, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व भी दिया हुआ है। अगर वो राज्य के नीति निदेशक तत्व दे सकते हैं तो यहां मूल अधिकार भी दे सकते थे कि मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन मूल अधिकार का उल्लंघन करता है यहां नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, मतलब मैं आपके प्रिपरेशन में जो पेच होती है उनकी भी बात कर रहा हूं कि जब आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे, मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को, तो कहां कहां आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ओरिजिनली जब आप देखेंगे तो जो धन का केंद्रीकरण था वो बकायदे धन इकट्ठा कर लेना आपके मूल अधिकारों में शामिल जैसा था, इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं थी, आपका यह मौलिक अधिकार था। देखिए हम कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, हम समाजवादी देश हैं। और समाजवादी क्या है? कम्युनिस्ट, जहां निजी संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं है। पूंजीवादी राष्ट्र क्या है? जहां निजी संपत्ति के लिए भरपूर गुंजाइश है। और समाजवादी क्या है? इन दोनों के बीच का है। हमारी जो व्यवस्था है वो समाजवादी व्यवस्था है। तो धन आप नहीं कमा सकते, अपने पास नहीं रख सकते, इस पर रोक नहीं है। पहले जब आप मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से किसी भी किताब में, ज्यादातर किताबों में मेंशन किया हुआ होता है कि यह पहले मौलिक अधिकार था, बाद में इसे वहां से हटाया गया, तो मौलिक अधिकार नहीं है। अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार में होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपको ध्यान होगा कि जब भी मैं पॉलिटिकल साइंस के प्रिपरेशन की बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिपरेशन की बात करता हूँ, तो हमेशा कहता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के हैं, और जो मूल कर्तव्य हैं, और यहाँ तक कि जो हमारा प्रीएम्बल है, उद्देशिका है, उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बहुत अच्छी पकड़। तो जब आप नीति निर्देशक तत्वों की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें जो पहला तीन श्रेणियों में बांटा गया है हमारे नीति निर्देशक तत्वों को सामान्य तौर पर, समाजवादी विचार, गांधीवादी विचार और उदारतावाद। तो समाजवादी सिद्धांत के तहत बकायदे ये मेंशन किया हुआ है, स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, मतलब राज्य इस तरह की नीतियां बनाए ताकि धन का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में न हो जाए और उत्पादन का भी केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में न हो जाए, यानी कि कुछ लोग ही पता लगा देश में पूंजीपति हो गए हैं और उन्हीं के पास धन का संग्रहण हो गया है, तो इसे वह रोकने की कोशिश करे, इस तरह की नीतियां बनाए। तो गाइडलाइन है केवल, बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो अब देखिए कि यदि आपने नीति निर्देशक तत्वों की बहुत अच्छे से तैयारी की है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधे सीधे सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो जब आप इन पर विचार करेंगे तो आप बाकायदे सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे अपनी क्षमता के विकास के साथ। तो दोस्तों, अब एक प्रश्न के बारे में मैंने बात की है, आगे हम लोग और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।